सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सयलोवसगणिवः संवरणेनेव जस्सफिट्टन्ति पाशस्सतसणमिं पाषणयो अम्परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये जो 13वीं पुस्तक पंचम खंड वर्गणा खंड, उसमें कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 124 पर आ गए। 124 यहाँ काल की बात चल रही है अपनी। हाँ, आपकी शंका है। हाँ, पृष्ठ संख्या 122। हाँ, कार्मण का योग वाले। हाँ, आपका प्रश्न है कार्मण का योग कब होता है? अकेले विग्रह गति में ही होता है ना, तो विग्रह गति में किसके होता है? सबके तो नहीं होता। जो सीधी गति से एक समय में जाने वाले रुजु गति वालों को कार्मण का योग नहीं होता है, डायरेक्ट उनको औदारिक मिश्र या वैक्रिक मिश्र शुरू हो जाता है। मोड़ सहित जाने वालों को हो सकता है, तो किसी को एक समय, दो समय या तीन समय हो सकता है। और कार्मण का योग कब है? केवली समुद्धात, उसमें भी कौन सा? प्रतर, लोक पूरण और वापस प्रतर, तो तीन समय। हाँ, अभी यहाँ ईर्यापत और तप कर्म का कितना काल है, तो नाना जीवों की अपेक्षा कितना है? जघन्य काल तीन समय जो लिखा है वो तो केवली समुद्घात की अपेक्षा है कि एक समय में तीन समय तक वो समुद्घात हुआ, फिर चौथे समय वहाँ कहाँ कोई भी जीव प्रतर समुद्घात वाला नहीं था। बीच में अंतर पड़ता है ना, जघन्य काल घटित करना था। नाना जीवों की अपेक्षा विग्रह गति की बात करेंगे तो सदा काल रहेगा, तो वो विग्रह गति वाली बात यहाँ नहीं लेनी। हाँ, तो केवली समुद्घात में ही होगा, विग्रह गति में तो ईर्यापत और वो तपकर्म होगा ही नहीं। और जघन्य काल घटित करना है यहाँ, विग्रह गति में जघन्य काल ऐसा नाना जीवों की अपेक्षा कभी घटित भी नहीं होगा किसी भी कर्म में। ख्याल में आई है? और उत्कृष्ट काल संख्यात समय, क्योंकि लगातार एक के बाद कोई केवली समुद्धात करते रहे तो संख्यात केवली करेंगे, इसलिए उनको संख्यात समय कहा। इतनी एक शंका। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 124 पर आए हम, नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। चार लाइन हमने पढ़ी थी, दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ किसकी बात, कौन सी मार्गणा चल रही है? अभी काल की तो बात चल रही है, ज्ञान मार्गणा में हम देख रहे हैं, और ज्ञान मार्गणा में विभंग ज्ञानी की बात चल रही थी, तो उसका उत्कृष्ट काल कहाँ होता है तो उसको देखो। उत्कृष्ट काल प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त से न्यून, यहाँ विभंग ज्ञान की बात चल रही है, तो नारकियों में देवों में विभंग ज्ञान तो होता है परंतु अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, पर्याप्त होने पर उनके विभंग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त कम कर दिया। 33 सागर है जो सातवीं पृथ्वी में प्राप्त होता है, ये विभंग ज्ञान है ना, इसलिए स्वर्गों की बात यहाँ नहीं लेनी है, सर्वार्थ सिद्धि वाले ही, वो तो वहाँ सभी सम्यक दृष्टि है। अब अभिनिबोधिक, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के प्रयोग कर्म और समवधान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त रहा तो उसके जघन्य काल घटित होगा, वापस वो नीचे के गुणस्थानों में आता है। और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर है, एक जीव की अपेक्षा ये बात है, यानी उसका सम्मुक्त बना रहे तो साधिक छासर सागर। आपका कहना है शायद की अपेक्षा क्यों नहीं ली यहाँ पर? वो पहले हमने जैसे देखा था उपशम वेदक और क्षायिक एक साथ लिया था, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 66 के बाद वो क्षायिक हो गया। हाँ, वो उन्होंने पहले घटित किया था। ये तीनों एक एक तीनों का अलग अलग लेना है, अवधि ज्ञानी को उसका अवधि ज्ञान बना रहेगा कैसे है? देव में तो होगा ही, परंतु मनुष्य में जब जब आता है तब हो सकता है कि अवधि ज्ञान हो उसके। तपक कर्म का कितना काल है वो भी साधिक में ही ले सकते हैं हम उसको, आपने जो बात कही। नहीं नहीं, वो 66 के आगे 33 आधा हो गया ना उसका। वो हमने पहले जो देखा था तीनों सम्यक्त की बात, वो कौन सी मार्गणा में ली थी? देखो 110 पृष्ठ पर क्रिया कर्म का काल कौन सी मार्गणा में बात थी? तो क्रिया कर्म का काल कितना है वो बात चल रही थी, सामान्य से बात चल रही थी, और वहां भी वही बात है, क्रिया कर्म साधिक कितना होता है? पूर्व कोटि 33 सागरोपम अधिक 66 सागरोपम, इसीलिए वो साधिक 66 कहा। वो 110 वाले जो पृष्ठ पर जी लिखा है वही बात यहाँ घटित होती है, समझ में है? 110 पृष्ठ पर जो हमने क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल देखा था वही यहाँ घटित होगा। वहां पहले देवों में उसको उपशम समय प्राप्त हुआ था, उसका अंतर्मूर्त बड़ा काल लिया था, फिर वहां से वो मनुष्य में आया, पूर्व कोटि तक रहा, वगैरह वगैरह, ऐसे ऊपर नीचे 66 सागर घटित किए थे, उसके बाद उसको क्षायिक सम्यक्त हुआ था, और फिर उसके साथ 33 सागर का और एक भव किया था, सब वो साधिक 66 में आ गए। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक तो कल पढ़ा था। तपक कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये हमने देखा था मिथ्यात्व में से कोई संयम प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करेगा और फिर वापस अंतर्मूर्त में लौट कर जाएगा। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, ये भी ख्याल में आवे ऐसे। ये जो तप कर्म है वो तो मनुष्य में ही होगा, और वो तो भवन तो कंटिन्यू तो होगा ही नहीं, बाद में देव में चला जाएगा तो उसका क्रिया कर्म रहेगा, तप कर्म नहीं रहेगा। एरियापथ कर्म का कितना काल है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। नाना जीवों की अपेक्षा भी ये घटित होगा, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान निरंतर नहीं है, उसमें बीच बीच में अंतर पड़ता है। तो नाना जीव 11वें में आए और फिर मरण को प्राप्त हुए, तो एक समय घटित होगा, एक जीव हो या अनेक जीव हो। क्योंकि जो जीव उपशांत कषाय गुणस्थान के प्रथम समय में एरियापथ कर्म को प्राप्त होकर दूसरे समय में मरकर देव हो जाता है, उसके एक समय काल प्राप्त होता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, एरियापथ कर्म का उत्कृष्ट काल क्यों? देखो कोई ऐसा है ना, एरियापथ कर शुरू हुआ उसके मान लेते क्षपक है, 12वें में आया, 13वें में आया, 14वें नहीं नहीं ये नाना जी होंगे, अपेक्षा होगी। उत्कृष्ट काल तो हमने देखा था ना कि एक जीव की अपेक्षा तो पूर्व कोटि अधिक से अधिक उतना होगा। ये नाना जीवों की अपेक्षा का देखो, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि, सॉरी हम बात किसकी कर रहे हैं? ओ ओ ओ ओ ओ वो तेरवे को नहीं लेना, हम अपने क्राइटेरिया भूल गए हैं। अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी की बात चल रही है उसको भूल गए। ये अंतर्मूर्त क्यों लेना है? उपशंद कषाय क्षीण कषाय दोनों ही गुणस्थान लेने हैं, क्योंकि मति श्रुत अवधि ज्ञानी की बात चल रही है। मति श्रुत अवधि सहित इरियापद की बात है। अंतर्मूर्त मात्र काल प्राप्त होता है, यानी वो एक जीव की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त है अधिक से अधिक। नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त होगा, बाद में उसमें गैप हो जाती है, अंतर हो जाता है। वो तो सांतर मार्गणा है ना, ये हमेशा नहीं रहते। इसी प्रकार मन परे ज्ञानी जीवों के सब पदों का काल कहना चाहिए। यह हुआ उसको चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां 66 सागरोपम काल कहा है वहां कुछ कम एक पूर्वकोटि काल कहना चाहिए। मनपरिज्ञान तो मुनियों में होगा, मनुष्यों में ही होगा, और क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय कहना चाहिए। मन परे ज्ञानी के साथ क्रिया कर्म ऐसा ले सकते हैं ना कि श्रेणी चढ़कर उतरा वो, श्रेणी में तो क्रिया कर्म नहीं था और उतर के क्रिया कर्म शुरू हुआ सातवें में आते ही, और एक समय में मरण हुआ, ऐसे होगा। देखो हम पढ़ेंगे आगे। क्रिया कर्म का जगह नहीं, एक समय केवल ज्ञानी जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापद कर्म और तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। समवदान कैसे लिया? समवदान हमने आठ सात छह, हाँ ये ऊपर लिखा है क्या? ऊपर भी लिखा है। तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है। मूल में भी ऊपर भी लिखा है, कैसे? क्या एक कर्म आता है उसको भी कहे? मैं तो उसको तो एरियापत का है, दूसरा नाम लिख दिया उसको ना एरियापत। प्रश्न चिन्ह लगाओ पेंसिल से उसको। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। अंत केवल ज्ञानी है ना, अंतर्मूर्त यानी अंतर्मूर्त में ही वो सारे गुणस्थान प्राप्त करके मोक्ष चला गए। इसी प्रकार केवल दर्शनी जीवों के भी कहना चाहिए। विशेषार्थ मन परे ज्ञानी जीव के क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणी से उतार कर और अप्रमत्त अवस्था में एक समय तक क्रियाकर्म रूप से परिणमा कर बाद में मरण कराकर देव पर्याय में ले जाने से प्राप्त होता है। ऐसे देखा था ना अभी हमने। अब संयम मार्गणा। संयम मार्गणा के अनुवाद से संयत जीवों के सब पदों का काल मन परे ज्ञान के सब पदों के काल के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इरियापथ कर्म का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि संयम मार्गणा है ना, ये संयत इतना ही कहा उसमें, और वहां तो मनोपर्य ज्ञान की बात थी। सामायिक संयत, छेदोपसापना संयत, यथाख्यात संयत और परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समवदान कर्म, इरियापथ कर्म, प्रयोग कर्म, प्रयोग कर्म, सामायिक, छेदोपस्थापना, यथाख्यात, परिहार, विशुद्धि, यह भी समवदान लिया है। प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापथ कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? हाँ, सामायिक में होगा, परंतु यथाख्यात में कैसे होगा? आठ सात छः कहाँ है वो? हाँ, यही वो परिभाषा फिर देखनी पड़ेगी। देखो, हम आगे देखेंगे। देखो, यह शायद लिखा होगा, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। इतनी विशेषता है कि यथाख्यात संयत जीवों के क्रियाकर्म नहीं होता। यानी समवदान लिया है वहां पर, तथा सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहार विशुद्धि संयत जीवों के इरियापथ कर्म नहीं होता। देखो ये सही, फिर दोबारा निकालना वो समवदान कर्म। अड़तालीस पृष्ठ, पैतालीस, यथा सात प्रकार के, आठ प्रकार के, छह प्रकार के कर्म का भेद रूप से ग्रहण होता है समवदान। कार्मण पुद्गलों का नीचे से तीसरी लाइन, कार्मण पुद्गलों का मिथ्यात्व, असंयम, योग और कषाय के निमित्त से आठ रूप, सात रूप, छह कर्म रूप भेद करना। बंध, उदय और सत्ता के भेद से। तो वहां सत्ता की अपेक्षा से होगा, हमने बंध की अपेक्षा ही लगाई थी, बता दिया ना उन्होंने। ये पेज 45 पर देखा था ना अभी हमने, कहाँ देखा? 46। सत्ता में तो चार कर्म निकल, यानी भेद रूप से है इतना ही वहां लेना है, वो आठ सात छः को वहाँ कीमत नहीं है, भेद रूप से ग्रहण करना, भेद होते हैं उसके, इसलिए समवदान कहा था। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं 126 पृष्ठ पर, सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, एक समय में आकर मर जाते हैं तो एक समय घटित होगा। उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। संयता संयत, स के ऊपर बिंदी लगाना, संयता संयत जीवों के संभव पदों का काल मनपरे ज्ञान के समान है। विशेषता, श को मात्रा देना, विशेषता है कि यह क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। यह ईर्ष्यापद कर्म और तप कर्म नहीं होते। तप कर्म संयतों को होता है, ये संयता संयत है ना, हाँ, और ईर्ष्यापद कर्म भी नहीं है। हाँ, असंयत जीवों की मति अज्ञानी जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त न्यून एक पूर्वकोटि अधिक 33 सागर है। असंयत जीव का ना तैतीस सागर कैसा आया? अंतर्मुहूर्त न्यून कर दिया उन्होंने। यानी वहां जाने के बाद क्रियाकर्म शुरू हुआ, ऐसा ही लेना ना कि सातवें तक लेना क्रियाकर्म। अंतर्मुहूर्त न्यून एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। ये 33 सागर वो बाद वाला लेना, क्रियाक्रम हमने कहां तक देखा, सातवें तक देखा ना। निपन ऊपर असंयत लगाया है तो असंयत लगाया तो असंयत लेना, इन्हें पहले वाला भव नहीं लेना। वहां तो मुनि थे क्योंकि सर्वासिद्धि जाने वाले वो मुनि होते हैं, असंयत में उनको नहीं लेना। तो असंयत कब जाए होंगे, देव में चले जाने के बाद, तो वो पूरे 33 सागर लेना। वहां से पूर्व कोटि के मनुष्य में आ गए, तो वहां मनुष्य में आ गए तो असंयत ही रहे, और लास्ट में उन्होंने फिर संयम ग्रहण किया, क्षपक्षरणी चढ़े वगैरह वगैरह, इस तरह से लेना उसको। पूर्व कोटि वाले नंतर लेना, बाद में नंतर लेने अनंतर पश्चात, यानी 33 सागर के पहले समय से शुरू करना। असंयत है वहां से, वहां जाने वाले तो संयमी है ना, मुनिराज होते हैं, तो वे जब विग्रह गति में आएंगे तभी चौथा गुणस्थान शुरू हुआ। यानी 33 सागर वहां से काउंट करने पूरे, फिर पूर्व कोटि वाले मनुष्य में आए तो असंयत रहे, तो अधिक से अधिक काल तक असंयत, उन्हीं में तो घटित कर रहे हैं। वो जल्दी मुनि दीक्षा लेंगे तो उत्कृष्ट काल घटित नहीं होगा ना, इसलिए हमें अधिक से अधिक असंयत में काल कितना जा सकता है उसकी बात करनी है। अब दर्शन मार्गणा के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले जीवों के सब पदों का काल त्रस पर्याप्त जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके ईर्ष्यापद का काल मनपरे ज्ञान वाले जीवों के ईर्ष्यापद कर्म के काल के समान है। कितना होगा जघन्य काल? हाँ, एक समय कैसे होगा? हाँ, ग्यारहवें में गया और एक समय में मरण हुआ। नहीं, फिर भी चक्षु दर्शन कायम रहा ना उनका, चक्षु दर्शन से अन्य दर्शन, एक मिनट, इरियापत का काल मनपर्य ज्ञान वाले जीवों के इरियापत कर्म के काल के समान है। ओ, दर्शन उनका बदल गया होगा इससे। हाँ, वो तो समझ में आया हमको, मार्गणा की बात देखनी ना, चक्षु दर्शन। चक्षु में गया फिर मन परे ज्ञानी वालों के इरियापत कर्म के समान है उन्होंने कहा। देखो, मन परे में हमने कैसे किया था, मन परे की कितना है, 125 पृष्ठ पर। क्रियाकर्म का उन्होंने जगन्य एक समय किया था, और मन परिज्ञानी जीवों के सपदों का कल कहना चाहिए शास्त्र समय में कुछ का। मन परिज्ञानियों में उन्होंने इरियापथ वहां घटित नहीं किया था ना, हाँ, उपयोग की अपेक्षा लेते हो तो ठीक है। चलो, अचक्षु दर्शन वाले जीवों के सब पदों का काल ओप के समान है। इतनी विशेषता है कि इरियापत कर्म का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यानी ये इसी की अपेक्षा ली उन्होंने उपयोग रूप की। चक्षु दर्शन उपयोग रूप भी कैसे ले गए हम वहां। यानी यहाँ ग्यारहवें बारहवें में वो चक्षु दर्शन का उपयोग, आप चक्षु ज्ञान का उपयोग कहाँ है, ख्याल में ना? आप कहते उपयोग रूप, केवल चक्षु दर्शन वाले है ऐसा समझना। तो वहां तक है ना चक्षु अचक्षु दर्शन, बारहवें तक चक्षु अचक्षु है ना। एक समय वहां मरण की अपेक्षा उन्होंने बताया, वो तो पहले बता दिया ना। पहले ग्यारहवें की ही बात की है, फिर अचक्षु दर्शन भी उन्होंने एक समय घटित किया है वहां पर। देखो आगे पढ़ते हैं, सुनो, अचक्षु दर्शन वाले जीवों के सब पदों का काल ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि इरियापत कर्म का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अवधि दर्शन वाले जीवों के सब पदों का काल अवधि ज्ञान वाले जीवों के सब पदों के काल के समान है। वो अभी हमने देखा था, मति श्रुत अवधि एक साथ लिया था हमने। अब लेशा मार्गणा के अनुवाद से, कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, लेशा में जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया, एक समय नहीं है। उत्कृष्ट काल, दो अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर, ये कैसे होगा? हाँ, नरक में लेशा वही रहती, बदलती नहीं है। तो दो अंतर्मूर्त, देखो सातवें नरक में जाने वाला जो जीव है मनुष्य तिर्यंच, मरण के एक अंतर्मूर्त से उसका वो कृष्ण लेशा में मरण होगा, तो एक अंतर्मूर्त वहाँ पर। फिर सातवें नरक में गया 33 सागर तक, वही लेशा रहे, फिर वहाँ से उसी लेशा के साथ यहाँ जन्म हुआ तिर्यंच में, तो अंतर्मूर्त तक कृष्ण लेशा रहेगी, फिर बाद में पलटेगी। ये सातवें नरक के अपेक्षा से, हाँ, कृष्ण नील कपोत लिखा ना, तो ये जो 33 सागर है ये कृष्ण के लिए, आगे जो दो अंतर्मूर्त अधिक 17 सागर वो है नील के लिए। ये सागर के बाद कॉमा लगाना। ये नील वाले के लिए, और दो अंतर्मूर्त अधिक 7 सागर वो कपोत के लिए। क्रियाकर्म का कितना काल है? यही कृष्ण नील और कपोत में क्रियाकर्म का काल पूछ रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट काल 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। ये 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर कैसे है? नरक में गया, एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, और एक अंतर्मूर्त में विशुद्धि से विशुद्ध हुआ, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तो क्रियाकर्म शुरू हुआ। लास्ट में फिर वो मिथ्यात्व में चला गया, फिर आयु बांधी, फिर विश्राम किया, फिर वो सब, ऐसे 3 अंतर्मूर्त कम, यानी 3 और 3 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। आगे वाला है 3 अंतर्मूर्त कम 17 सागर नील के लिए, वहां उसी सम्यक्त के साथ मनुष्य में जन्मेगा कि तिर्यंच होगा, मनुष्य में भी आ सकता है। ज्यादा करके नहीं, मनुष्य में ही आएगा, नियम क्या है? हमारा प्रश्न क्या था? छठे नरक से सम्यक्त के साथ मरकर कौन सी लेशा में आया है? नील लेशा में। सम्यक दृष्टि मनुष्य में ही आएगा, वो ही लगाना उसको। नारकी जो है, नारकी सम्यक्त के साथ जन्मेगा तो मनुष्य में ही जन्मेगा। वहां प्राप्त किया है, सातवें नरक वाला उस वहां से नहीं ला सकता सम्यक्त्व के साथ, परंतु छठे नरक तक के नारकी सम्यक्त्व के साथ अब यहाँ मनुष्य में ही आएंगे, वो तिर्यंच में नहीं जाएंगे। हाँ, वेदक के साथ ही है, क्योंकि उपशम्य मरण नहीं है, वहां क्षायिक होता नहीं है। अभी पहले में जो क्षायिक के साथ गया है वो क्षायिक के साथ आएगा, उसकी बात नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, परंतु वो तिर्यंच में जाएंगे नहीं। हाँ, सम्यक तो है ना उसका, तो मनुष्य में ही जन्मेंगे। तो ये 3 ही अंतर्मूर्त लिए, क्योंकि वो वहां जाने के बाद उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया था, इसलिए ये पहले 3 अंतर्मूर्त घटाने, बाद में नहीं घटाना। हाँ, अंत में नहीं घटाना, क्योंकि हमको उत्कृष्ट काल देखना है इसलिए। और 3 अंतर्मूर्त कम 7 सागर है, ये कपोतलेशा के लिए। पीतलेशा और पद्मलेशा वाले जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो एक क्लेशा में अंतर्मूर्त रहता है, इस अपेक्षा से अंतर्मूर्त है। अभी देवों में तो पीतलेशा ही रहेगी लंबे काल तक, तो उसकी अपेक्षा भी वो दूसरी अपेक्षा उत्कृष्ट काल में घटित करेंगे। और क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय है,
जो
क्या क्या क्या, एक समय में मर के उनका सम्यक तो भी चालू रहेगा और लेशा भी चालू रहेगी। जो पीत लेशा में सम्यक्त के साथ मरेंगे वो यहाँ पीत लेशा के साथ सम्यक्त के साथ जन्मेंगे, तो ये कैसा घटित होगा? देखो जब ये पीत लेशा की बात है ना, अब ये कोई ना एक कोई मनुष्य जो है, मनुष्य किसी एक लेशा के साथ वो चढ़ा, उसने सम्यक्त प्राप्त किया और लेशा पलट गई, पित्त से पद्म हुई, तो क्या होगा उसका? एक समय होगा ना, क्योंकि उसका लेश पित्त में भले वो अंतर्मूर्त था परंतु वो परंतु उसकी लेशा वो विशुद्धि बढ़ गई उसकी, और पित्त से पद्म में भी चला गया, पद्म से शुक्ल में चला गया, या कोई स्टार्टिंग में पद्म में था और भी पद्म से शुक्ल हो गया, तो उसका एक समय होगा वहां पर। लेशा पलटने से उसका उस लेशा में क्रिया वो क्रियाकर्म एक समय घटित होता है, क्रियाकर्म नहीं समाप्त हुआ, लेशा पलट गई। मर भी गया तो लेशा भी वही रहती है, सम्यक्त के साथ लेशा बदलती नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि है और देव है तो पीत लेशा में मरकर जब यहाँ मनुष्य तिरिंच में मिथ्यात्व के साथ जन्म है तो तीन अशुभ लेशा में ही जन्मेगा, उसके एक समय में ही वो परिवर्तन होता है और फिर जंप करके परिवर्तन होगा, ये पीत से कपोत में चला आएगा। देखो इसको फिर पढ़ते, पीत लेशा से लिखते, पीत लेशा और पद्म लेशा वाले जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, ये तो समझने में आसान है। एक जीव की अपेक्षा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक लेशा में वो अंतर्मूर्त रहता है, और क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय है, वो अभी हमने देखा कैसे घटित होता है। उत्कृष्ट काल आदि आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त अधिक तथा अंतर्मूर्त न्यून, आधा सागर अधिक दो सागर और 18 सागर है। क्या क्या कहना चाहते हैं देखो, किसकी बात चल रही है? अब पीतलेशा वाले की, पीतलेशा वाले का उत्कृष्ट काल कितना है, पीतलेशा वाले में उत्कृष्ट काल कितना है पीतलेशा, तो पीत लेशा अधिक से अधिक कहाँ होगी? भवनात्रिक में होती परंतु वहां की आयु कम है, तो सौधर्म ईशान में, तो सौधर्म ईशान में दो सागर होती है, परंतु दो सागर के भी ज्यादा हो सकती है क्या वहां? तो घातायुष्क की होती है, वो कितना होता है? अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा होती है, यानी अंतर्मूर्त कम ढाई सागर कहेंगे ना वहां पर। देखो कोई समय दृष्टि जो है पहले उसने बड़ी आयु बांधी है ऊपर के स्वर्गों की, और बाद में परिणामों के वश उसके आयु का पूर्वभव में वो घात हुआ, अभी आके नहीं हुआ है, तो उसके आयु का घात हुआ, स्थिति कम हो गई, तो नीचे के स्वर्गों से वो एक अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा रहती है, और मिथ्या दृष्टि घातायुष्क है तो वो पल्ले के असंख्यातवे भाग से अधिक रहता है। तो ये जो तो ऐसा घातायुष्क है ना, तो पीत लेशा अधिक से अधिक किसके है उसकी बात चल रही है। सौधर्म ईशान वाला जो घातायुष्क है उसकी लंबी आयु है। अब वहां जन्मने के पहले अंतर्मूर्त मनुष्य में जो था या तिर्यंच में था तो उसकी पीत लेशा थी, अब पीत लेशा के साथ वहां जन्मा, यानी पहला एक अंतर्मूर्त, फिर वहां की कितनी लेनी है? वो ढाई सागर है, ढाई सागर में अंतर्मूर्त कम था उसका, फिर वहां से उसी लेशा के साथ यहाँ आएगा, तो समय दृष्टि होगा तो उसी लेशा के साथ आएगा, मिथ्या दृष्टि होगा तो अशुभ में चला जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ, यहाँ क्रियाकर्म की बात नहीं ना शादी, इसलिए हाँ घात होता है, वहां जाने पर उसको मिथ्या तो में चला जाएगा, उसमें क्या बात है? तिर्यंच सम्यक दृष्टि को घाता इष्क नहीं होता। तप वाले संयमी वाले के होता है। वो पल्ले का संख्या तो मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि की बात है उसकी। ये सामान्य सम्यक दृष्टि का घाता इष्क होता है कि नहीं होता है, ये सवाल है। सामान्य सम्यक दृष्टि को घाता इष्क होता है कि नहीं होता है? जरा बताना फिर। हाँ नहीं, वो संयमी की तो बात पहले आई है। संयमी है फिर उसका संयम का घात हुआ तो नीचे के घाता इष्क हो गया, परंतु सामान्य सम्यक दृष्टि में क्या रूल है ये जानना चाहते हैं। सामान्य सम्यक दृष्टि के घाता इष्क में कितना घटता है देखेंगे अभी हम। हाँ तो ये न्यून क्यों कहा उसकी बात चल रही है। देखो अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे उत्कृष्ट काल को। आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त अधिक। आदि और अंत के समझ में, पित्तलेशा में मर कर गया है वो पहले आदि का अंतर्मूर्त, और वहां से आने के बाद फिर पित्तलेशा होगी वो अंत का। तथा अंतर्मूर्त न्यून आधा सागर अधिक दो सागर और 18 सागर है। पद्म वाले के लिए 18 सागर और ये आधा सागर अधिक दो सागर वो पीत के लिए। और आगे 18 वाली बात है वो पद्म के लिए। तपकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। विशिष्ट लेशा वाले की बात चल रही ना। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार शुक्ल लेशा में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विशेषता करना कि क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर है। ये तो सर्वार सिद्धि की अपेक्षा लेना है इसको उत्कृष्ट काल में। इरियापत कर्म और तपक कर्म का कितना काल है? देखो पहले पीत और पद्म में इरियापत को नहीं लिया था परंतु तप कर्म को लिया था। इरियापत को क्यों नहीं लिया था? शुक्ल लेखा के साथ ही श्रेणी चढ़ने का होता है। हाँ। श्रेणी में और यहाँ तो 11वें गुणस्थान वाले के भी शुक्ल लेशा ही होगी इसलिए इसको लेना। तो इसका कितना काल है? शुक्ल में इसको लिया भी इरियापत और तपकर्म। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और अंतर्मूर्त है। यानी इरियापत के लिए एक समय और तपकर्म के लिए अंतर्मूर्त। तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि कोई देव या नारकिक शायिक सम्य दृष्टि जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां गर्भ से लेकर 8 वर्ष के बाद अप्रमत्त भाव से संयम को प्राप्त हुआ, तदनंतर प्रमत्त अप्रमत्त अपूर्व क्षपक अनिवृत्ति क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक होकर क्षीण कषाय हुआ। यहां इरियापत कर्म का प्रारंभ दिखाई देता है। तदनंतर संयोग केवली होकर जब तक पूर्व कोटि काल है तब तक इरियापत कर्म उपलब्ध होता है। इस प्रकार गर्भ से 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त न्यून एक पूर्व कोटि प्रमाण इरियापत कर्म का उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। तपक कर्म का काल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है इसका गर्भ से लेकर 8 वर्ष कम पूर्व कोटि प्रमाण उत्कृष्ट काल होता है ऐसा कहना चाहिए। ऐसा है ना, वो ऐसा करो। क्या दोनों में डिफरेंस क्या बताया? ये अंतर्मूर्त न्यून कहा, क्यों कहा? इरियापत और तपकर्म की बात है, देखो चौदहवें वाले को भी तपकर्म है और इरियापत तो किसको है, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें को ही होता है ना। तो यहाँ जो अपने केस में जो यहाँ लिखा तो शपक कर यानी बारहवें वाले को और तेरहवें वाले को लेना, चौदहवें वाले को इरियापत नहीं है परंतु तपकर्म है, तो वहाँ वो अंतर्मूर्त न्यून कर दिया था। और तपकर्म ऐसे भी छठे से लेना है और उसको हमने बारहवें से शुरू किया था, वो भी उसमें काउंट कर सकते हैं। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य सिद्धिक जीवों के सब पदों का काल ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके काल का अनादि अनंत भंग नहीं होता, यानी वहाँ जो प्रयोग कर्म और समोदान कर्म में जो हमने सब जीवों का जो ओघ के समान, ओघ में क्या तो उनको भी लिया ना, ओघ यानी सामान्य कथन, सामान्य में तो कोई जीव अनादि अनंत भी होते हैं अभव्यों की अपेक्षा, उसको यहाँ नहीं। अभव्य सिद्धिक जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का काल नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है, ये अभव्य सिद्धिकों में। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टियों के सब पदों का काल अवधि ज्ञानियों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके इरियापत कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, ये पहले हमने बहुत बार देखा है इसको। इसी प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टियों के भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके और अप्रमत्त गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की क्षपणा करके सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक क्रियाकर्म के साथ रहकर जिस जीव ने अपूर्वकरण क्षपक पर्याय को प्राप्त होकर उसके प्रथम समय में ही क्रियाकर्म का अभाव कर दिया है, उसके क्रियाकर्म का जघन्य काल उपलब्ध होता है। ये समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, क्रियाकर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, चौथे से सातवें तक, परंतु अपना भी क्राइटेरिया क्या है, क्षायिक सम्यक। तो पहले वो सम्यक दृष्टि तो था, उसके क्रियाकर्म था, परंतु क्षायिक के साथ क्रियाकर्म को लगाना है। तो ये क्षय, उसने क्षायिकपना कभी प्राप्त किया, सातवें गुणस्थान में। तो क्षायिक करने का प्रोसेस क्या है, तो पहले पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजना करते हैं और फिर अप्रमत्त में वो दर्शन मोहिनी की क्षपणा की, क्षपणा के बाद एक अंतर्मूर्त में ही वो क्षपक श्रेणी चढ़े, तो उसका वो अंतर्मूर्त है ना, क्षपणा करने के बाद सात छठे सातवें में रहने का काल एक अंतर्मूर्त है और तुरंत वो क्षपक श्रेणी चढ़े, श्रेणी में वो क्रियाकर्म नहीं रहा, इसलिए अंतर्मूर्त लघु अंतर्मूर्त घटित होता है, उसका जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम दो पूर्व अधिक 33 सागर है। क्योंकि कोई देव या नार की वेदक समय दृष्टि जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, यानी जिस भव में क्षायिक प्राप्त करने वाला है उस भव में वो उत्पन्न हुआ, पुनः गर्भ से लेकर 8 वर्ष के बाद अधपकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों को करके कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होकर क्षायिक समय दृष्टि हुआ, यानी यहाँ से उसका वो भंग शुरू हुआ ना, क्षायिक सम्यक्त के साथ शुरू हुआ। तदनंतर एक पूर्वकोटि काल तक जीवित रहकर 33 सागर प्रमाण स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। अभी यहाँ अपना भंग वो क्षायिक सम्यक्त्व का है, वो मुनि हुआ वगैरह ये बातें उसमें गर्भित है। जब संयत का प्रकरण था तो उसमें तो हमने उनको नहीं लिया था, है ना। ये क्षायिक समय दृष्टि है। देखो 8वें साल में क्षायिक समय दृष्टि हुआ है और पूर्व कोटि काल तक वो बताकर 33 सागर वाले देवों में उत्पन्न हुआ। तदनंतर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। तदनंतर पूर्व कोटि काल तक विहार करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार प्रथम पूर्व कोटि के अधप प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और कृतकरणीय संबंधी काल से अधिक गर्भ से लेकर 8 वर्ष प्रमाण काल से न्यून, यानी वो पहला वाला जो मनुष्य भव था पूर्व कोटि वाला, जब उन्होंने क्षायिक प्राप्त किया था उसके लिए जो वो करण हो, करण के लिए जितना काल आवश्यक था क्षायिक होने के लिए, उसको छोड़ दिया और 8 साल को भी छोड़ दिया। तथा दूसरी पूर्व कोटि के अपूर्व क्षपक, अनिवृत्ति क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय, सहयोगी अयोगी संबंधी काल से न्यून, यानी फिर दोबारा जब वो अंतिम भव में आए तो क्रियाकर्म कब तक रहा? 7वें तक। इसलिए आगे के गुणस्थानों का जो काल होगा उसको अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त करके पूरे एक अंतर्मूर्त में पटाएंगे, उसको न्यून पूर्व कोटि किया। तो ये 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, और उसमें जो कुछ घटाना है वो हमने घटा दिया। इतने प्रमाण क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल पाया जाता है। इसी प्रकार प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का भी कथन करना चाहिए। एक शायक की बात हुई, वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है। यहां देशों न कहने से सबसे जघन्य क्षायिक सम्यक दृष्टि संबंधी काल से न्यून काल लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चारित्र मोहिनी की क्षपण का काल 66 सागर से बाहर है ऐसा जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो कहा ना 66 सागर, तो उसमें कुछ कम क्यों कहा? तो अभी ये जो वेदक है वो क्षायिक होने के लिए जो काल लगेगा अंतर्मूर्त, उससे वो न्यून कहा, और चारित्र मोह की जो क्षपणा का काल है वो इससे बाहर समय, इसके अंतर्गत उसको नहीं लेना है। तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो असंयत वेदक सम्यक दृष्टि जीव, वेदक सम्यक दृष्टि को लेना है ना यहाँ पर, क्योंकि अपना क्राइटेरिया वेदक सम्यक दृष्टि है और उसमें तप कर्म घटित करना है, परिणामों के निमित्त से संयम को प्राप्त हो जाता है और संयम में सबसे थोड़े काल तक रहकर असंयम को प्राप्त हो जाता है, उसके तप कर्म का जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम 1 पूर्व कोटि है, क्योंकि कोई एक वेदक सम्यक दृष्टि देव या नारकी जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, फिर गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ कुछ कम क्रुच हुआ, कुछ कम पूर्व कोटि काल तक तपक कर्म करके देव हुआ। इस प्रकार गर्भ से लेकर 8 वर्ष कम पूर्व कोटि प्रमाण तपक कर्म का उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। अब उपशम समय दृष्टि में, उपशम समय दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ऐसा क्यों कहा? वो सांतर मार्गणा है, उपशम समय, ये सांतर मार्गणा है, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा उसमें अंतर्मूर्त घटित होता है। उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, ये नाना जीवों की बात चल रही है, यानी इतने काल के बाद वहां कोई वो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक चारों गति का जीव तीनों करणों को करके उपशम सम्यक दृष्टि हुआ, पुनः सबसे जघन्य उपशम सम्यक के काल के भीतर छह आवली काल शेष रहने पर क्या कहना चाहते हैं? ये जघन्य उपशम का काल कब घटित होगा? उपशम में से गिरकर सासादन में जाएगा तो उसका उपशम का काल वहां कट हो गया ना, तो अधिक से अधिक कितना पहले वो गिर सकता है? तो छह आवली, तो इसलिए उसमें से छह आवली घटाएंगे। देखो, सबसे जघन्य उपशम सम्यक्त के काल के भीतर, उपशम सम्यक्त का काल भी जघन्य उत्कृष्ट अनेक प्रकार का होगा, उसमें से भी ये छह आवली घटाना, घटाने पर शेष रहने अवली काल शेष रहने पर सासादन सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल मात्र काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यह उपशम सम्यक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट काल लेना चाहिए, यानी उपशम सम्यक दृष्टियों में पॉसिबल इतना उत्कृष्ट काल। वेरिएशन है, किसी का जघन्य काल है, किसी का अधिक काल तक है। शंका, हाँ दृष्ट को नहीं, क्यों नहीं लिया ऐसा? दृष्ट बार बार उपशम सम्यक तो नहीं प्राप्त करता है, वेदक करता है। वो बीच में हो तो पल्ले का असंख्या तो भाग काल जाने के बाद फिर दोबारा उपशम कर सकता है। अच्छा प्रश्न पूछते हो। शंका, क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय है, ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरे हुए उपशम सम्यक दृष्टि का यद्यपि मरण होता है, तो भी यह जीव उपशम सम्यक्त के साथ अंतर्मूर्त काल तक रहकर ही वेदक सम्यक्त को प्राप्त होता है, क्योंकि उपशम सम्यक तो यानी द्वितीय उपशम में मरण हो सकता है, प्रथम उपशम में तो मरण होता ही नहीं है, और वहां मरण भी होगा तो देव अपर्याप्त अवस्था में उसको उपशम सम्यक तो के साथ ही जाता है वो द्वितीय उपशम की वाला, और फिर बाद में वो उसको वेदक सम्यक तो हो जाता है। यही कारण है कि उपशम सम्यक दृष्टि के जघन्य काल एक समय नहीं कहा। क्रियाकर्म का जघन्य काल, तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो मनुष्य उपशम सम्यक्त और संयम को युगपत प्राप्त होकर और अति लघु अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर छह आवली काल के शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उनके यह काल पाया जाता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि परस्पर जुड़े हुए उपशम सम्यक्तों के संख्यात कालों को कालों के ग्रहण करने पर उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। ये परस्पर जुड़े हुए कैसे कहना, किसकी बात चल रही है? हाँ प्रतिभा ताई, आप क्या कहते हैं इसमें? यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा चल रही है, एक जीव का सम्यक्त्व का काल, दूसरे जीव का सम्यक्त्व का काल, तीसरे जीव का, ये परस्पर उपशम सम्यक्त्व का काल जोड़ने का अर्थ क्या है? नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ घटित कर रहे हैं। देखो पहले में पहले उन्होंने क्या कहा, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त वो बता दिया, और नाना ही जीवों के अपेक्षा से उत्कृष्ट काल वो बता रहे हैं, उपशम सम्यक्त्व का बता रहे हैं, ख्याल है? क्योंकि संख्यात जीवों की बात है ना, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है अभी भी। नाना जीवों की अपेक्षा, हाँ एक जीव की बात अब निकाल रहे, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इरियापत कर्म का कितना काल है? उपशम सम्यक्त्व में इरियापत कर्म प्रथम उपशम वाले को होगे कि द्वितीय उपशम वाले? द्वितीय उपशम वाले को होगा। गुणस्थान कौन सा होगा? 11 ही होगा ना, 11वां यानी इरियापत उसको कब होता है? 11वें में होता है। हाँ देखो, नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, 11वें में गया और एक समय में मरा। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वहां भी अंतर पड़ता है नाना जीवों की अपेक्षा, इसलिए उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त घटित किया। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के, ये मार्गणा कौन सी चल रही है? सम्यक तो मार्गणा, इसलिए अभी तक तीन हो गए ना, क्षायिक को लिया, वेदक को लिया, उपशम को लिया। अब सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त है। सासाधन वाला एक समय और सम्यक मिथ्यात्व वाला अंतर्मूर्त, तथा उत्कृष्ट काल दोनों का ही पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। बाद में क्या होगा दोनों के लिए? अंतर पड़ गया, अंतर पड़ जाएगा। ये सांतर मार्गणाएं हैं। सासाधन वाला का एक समय कैसे घटित किए करते हैं? हाँ बोलो देवेंद्र भाई, सासाधन का एक समय कैसे घटित होगा? मरने पर भी सासाधन चालू रहेगा ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं लेना। उपशम सम्यक के एक समय पहले ही वो गिर गया तो उसका सासाधन का काल ही एक समय रहेगा। सासाधन गुणस्थान का काल ही एक समय से लेकर 6 अवली तक है, वहां मरण की अपेक्षा लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? हम अगर गति कहेंगे उसमें गति की अपेक्षा बीच में लगाएंगे तो वो उसमें मरने की जरूरत है। अब यहाँ तो अकेले सासाधन को लगाना है। देखो, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त है, यानी दूसरे गुणस्थान के लिए एक समय सासाधन के लिए, और तीसरे वाला कम से कम भी अंतर्मूर्त। प्रतिभात है वहां मरण होगा तो एक समय घटित होगा कि नहीं होगा? अरे वाह, मरण ही नहीं है। अंतर्मूर्त, उसका काल ही अंतर्मूर्त है यथायुग्य, उसमें मरण होता ही नहीं है, यानी उसका अंतर्मूर्त फिक्स है, उसमें जघन्य उत्कृष्ट कुछ नहीं होगा। तीसरे गुणस्थान का यथायोग्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट का सासाधन का 6 अवली और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त बता दो। हाँ अंतर्मूर्त, पर ये अंतर्मूर्त का प्रमाण यहाँ फिक्स मालूम है ना अपने? हाँ 6 अवली भी अंतर्मूर्त ही है, 6 अवली भी अंतर्मूर्त है, परंतु उसका फिक्स अंतर्मूर्त की वो लिमिट है, उसके आदि अधिक नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि के संभव पदों का काल मति अज्ञानियों के समान है। अब संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों के सब पदों का काल पंचेंद्रियों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके इरियापत कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ जघन्य काल एक समय कैसे घटित होता है? एक समय में, हाँ और उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त क्यों? हाँ, तेरहवें में संगी असंगी नहीं है, वो अनुभव हो जाता है, इसलिए बारहवें तक के वो अंतर्मुहूर्त घटित होता है। असंगी जीवों के एकेंद्रियों के समान भंग है। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारक जीवों के सब पदों का काल ओघ के समान है, इतनी विशेषता है, यहां अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अनाहारक जीवों के प्रयोग कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अनाहारक कब हो गए? एक तो हमने कार्मण का योग के जो है वहीं पर वही यहाँ अप्लाई करना। समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। देखो अनाहारक जीवों की बात चल रही
है,
विग्रह गति में या केवली समुदाय समुदान कर्म की बात है ना? क्यों बंध तो हो रहा है ना वहां पर? आठ नहीं पर सात है। जो पॉसिबल है वो ले सकते हैं वहां पर। और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। किसकी बात चल रही है? समवदान का, अनाहारक समवदान का। कहां पर लेना? हाँ, वह काल कहाँ प्राप्त होता है? वह अयोगी केवली गुणस्थान में प्राप्त होता है। वही हो तो सत्ता की अपेक्षा लेनी पड़ेगी वहां पर। वहां तो बंद है ही नहीं ना, यानी अनेक है, अनेक प्रकार के है, इतना ही लेना, साथ वो संख्या नहीं लेना उसमें। उदय भी है और सत्ता भी है। इरियापत कर्म का कितना काल है? अनाहारक में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय। अनेक जीव है ना, तो लगातार केवली समुदात करते रहेंगे तो संख्यात समय होगा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय है। तपक कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट काल पांच ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उससे संख्यात गुणा। अयोगी को भी लिया ना, तप अनाहारक में अयोगी को लेना, तप कर्म उनके है ना, उससे संख्यात गुणा, क्योंकि लगातार प्रत्येक समय में नाना जीव की बात चल रही है तो अयोगी 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 गुणस्थान में जीव आते रहेंगे तो उसकी अपेक्षा संख्यात गुणा बताया। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट काल पांच ह्रस्व स्वरों अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना है, यानी चौदहवें गुणस्थान की अपेक्षा बताएं। अनाहारक में इरियापत नहीं, तपकर्म, तपकर्म। क्रियाकर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अनाहारक में क्रियाकर्म यानी सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले जीव लेने चाहिए, है ना? अनाहारक कब हो गए? क्रियाकर्म वाले विग्रह गति में, वो वाला संयोग केवली की बात लेनी ही नहीं है। तो विग्रह गति में यानी अनाहारक है और क्रियाकर्म है, यानी उसका चौथा गुण स्थान के साथ जन्मना चाहिए। तो लगातार वो अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण हो गए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये एक वाक्य डबल प्रिंट हुआ है और उसमें गड़बड़ी हुई है। ये जो आवली का असंख्यात्व है ना, तो ये ऊपर का ये पुनरावृत्ति होगी। वह नाना जीवों की बात इसमें आ गई है। ये पूरा एक वाक्य काटना पड़ेगा। देखो अभी हमने नाना जीवों की अपेक्षा क्या पढ़ा, जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। अब आगे वाला पूरा एक वाक्य काट दो, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट आवली के असंख्यात्व भाग, ये निकाल दो। उसके बदले आगे का वाक्य पढ़ेंगे अभी हम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, यहाँ तक तो ठीक था, बाकी की वो नाना जीवों की बात उन्होंने ली थी रिपीट करके। और उत्कृष्ट काल दो समय है, दो समय से अधिक नहीं लगेगा। हाँ, ख्याल में आया क्या काटना है? ऊपर है ना, देखो एक जीवम पड़ुच्छ, ऊपर से छठी लाइन है, जड़ने न एक समो उकसे न बेसमया। अब आगे एक जीव की अपेक्षा, ये पढ़ा हमने, आगे उसके अधक कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय करना, समय है, समम हुआ है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, ये हमने पहले देखा था। अधक कर्म का काल कब लेना, वो आहार औदारिक शरीर के जो नौ कर्म वर्गणाएं हैं वो उसी अवस्था में पूरे लोक में फैले रहते हैं। कितने काल तक रहेंगे उसी अवस्था में? हाँ, अनाहारक है, ले नहीं रहा, अपन छोड़ रहा है ना। अच्छा, अनाहारक के लिए वो भी ले लेंगे फिर, तो वहां उनके लेना क्या सेव को? विग्रह गति वाले को तो नहीं ले सकते हैं, परंतु सहयोगी को लेना ना। हाँ, औदारिक के अनारक काल उसका, उसके जो परमाणु छूट गए हैं, छूटने वाले परमाणु, वहां ग्रहण की बात नहीं। अधक कर्म में किसको लेना है? छूटने वाले परमाणुओं को। एक समय में उसकी अवस्था बदल जाएगी। या असंख्यात लोक वाला जो काल है, काल की बात है, क्षेत्र की नहीं। हाँ, फिर से अधक कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक, ग्रहण नहीं है, देखो ग्रहण नहीं, परंतु निर्जरा है कि नहीं आयोग केवली में? विग्रह गति वाले को मत लेना यार। देखो क्या कहते हैं, अनाहारक अयोगी जीवों के, आई ना बात? शरीर से जो औदारिक परमाणु निर्जीर्ण होते हैं उनका यह जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिए, ख्याल है ना? उनकी अपेक्षा वो अंतिम समय में वाली, वो कितने काल तक उसी रूप से रहते हैं, ये पहले बात आई थी एक बार। इस प्रकार कालानुयोग द्वारा समाप्त हुआ। हाँ, देखो अधक कर्म में किसको लेना, औदारिक शरीर के जो परमाणु हमारे हर समय छूटते रहे हैं, तो छूट रहे तो एक समय में उसका अन्य अवस्था रूप से परिणमित हो सकता है, या उसी प्रमाण उसी अवस्था में रहे तो कितने काल तक रह सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण काल, काल काल यानी उस नौकर्म रूप अवस्था जो है ना, औदारिक नौकर्म वर्गणा रूप रहने का काल। बाद में वो परमाणु छूटे जाएंगे, उसके अन्य वर्गणा बनेगी, उसकी बात नहीं है। हाँ, उसी अवस्था से रहने का उत्कृष्ट काल। यानी वो तीन समय वाले इसमें भी घटित होगा। परसों हमको शंका थी ना, सेवक के विलय में भी होगा, अयोग में तो है ही है, ये समुद्घात अवस्था में भी हो, अवतारिक शरीर के परमाणु तो हर समय छूट रहे ना, ग्रहण नहीं है मगर छूटना चल रहा है। ये अयोगी में ग्रहण क्यों नहीं है, योग क्यों नहीं है, तो क्यों है अयोग के लिए, योग क्यों नहीं, वही तो मेरा प्रश्न है। योग नहीं इसलिए अयोग है तो समझे, अयोग होने में निमित्त पहले सयोग्य क्यों थे। हाँ अरे सब नाम कर्म 93 है। औदारिक शरीर, अभी शरीर में भी औदारिक शरीर नाम कर्म का क्यों। हाँ औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया, ये सारे उदय की विच्छेद, औदारिक शरीर का बंधन तो चौथे में मिट गया, उदय की विच्छेति कहाँ हुई, 13वे में। हाँ ये सारे तेजस कारमान सबका उदय मिट गया वहां पर। अभी अंतरानुगम चलेगा, अभी तक हम काल की अपेक्षा बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सोचने का तरीका बदलना है। नहीं तो वही काल ही काल याद आता है। अंतर यानी देखो किसी विशिष्ट मार्गणा में था, मान लेते हम सम्यक भी हुआ था, कोई जीव सम्यक दृष्टि है, अब सम्यक तो में से वो हट गया ने क्या होगा, मिथ्या दृष्टि हुआ या सासाधन में गया या सम्यक मिथ्या हुआ, फिर वापस जो सम्यक तो होने के लिए उसको बीच में कितना अंतर गया गैप, उसको कहते हैं उस गुणस्थान का अंतर। जैसे कोई मिथ्यात्व में था, मिथ्यात्व छूटकर सम्यक भी हुआ और फिर वापस मिथ्यात्व में आया, एक अंतर्मूर्त में आ सकता है ना, तो उसका जघन्य अंतर कितना है, एक अंतर्मूर्त, वो एक जीव की अपेक्षा होगा क्या, नाना जीवन की अपेक्षा होगा, नाना जीवन की अपेक्षा क्या होगा, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व में हमेशा ही जीव बने रहेंगे, ख्याल है ना। हाँ यानी जो जिसकी बात चल रही ना, जिसकी विवक्षित बात चल रही, उससे वो अन्यत्र चला गया और वापस उस विवक्षित में आ गया, तो कम से कम कितने काल तक लौट सकता है और अधिक से अधिक कितने काल तक लौट सकता है, उसके लिए वो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर होगा। अब यहाँ निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। यहाँ सामान्य से कौन से कर्म का जघन्य उत्कृष्ट कर्म काल कितना है, इस काल नहीं अंतर कितना है बताएंगे, उसको ओघ कहते हैं। ओघ की अपेक्षा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना अंतर काल है, तो कहते हैं नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा अंतर काल नहीं है, निरंतर है। आपका कहना है एक जीव की अपेक्षा निरंतर कैसा है, क्योंकि समवदान कर्म अभी तक तो हमने कहां तक घटित किया, केवली को भी होता है कहा, और फिर वो छूट गया और फिर वापस उसमें आया। देखो प्रयोग कर्म का भी देखो, समवदान को बाजू में रखो, प्रयोग कर्म यानी अब उसके उसके योग वाला जीव है, जीव को वहां प्रयोग कर्म कहा, तो ऐसी अवस्था होगी कि वो योग में से अयोगी हुआ और वापस योग में आया। वापिस आने की बात सोचना है यार, वो वापिस नहीं आ सकता है। समवदान में भी ऐसे ही लगाना, वो बंधा है उदय है या उसकी सत्ता है, बहुत कितने कितने, और हमारे सोचने का यानी कितनी बातें हम स्लिप कर जाते हैं ना, एक सोचते तो दूसरी छूट जाती है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि जो औदारिक नौ कर्म स्कंद या स्कंदों को ही कर्म कहा है ना, तो जो औदारिक नौ कर्म स्कंद औदारिक शरीर से निर्जीर्ण होकर औदारिक भाव के बिना एक समय रहकर दूसरे समय में पुनः औदारिक रूप से परिणत हो जाते हैं, उनका एक समय अंतरकाल उपलब्ध होता है। ये वर्गणा की अपेक्षा लेना है, वो जीव ने ग्रहण किया नहीं करा उसकी बात नहीं है। पहले क्या हुआ था, औदारिक नवकर्म स्कंद औदारिक शरीर से निर्जीर्ण हुआ और औदारिक भाव के बिना एक समय रहा, एक समय तक वो औदारिक नहीं था और पुनः औदारिक रूप से परिणत, यानी वो औदारिक शरीर हुआ, ऐसा ही लेना है ना, औदारिक शरीर हुआ उसका एक समय अंतरकाल है, गृहित का ग्रहण किया वही युग है। उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है, एक जीव की अपेक्षा लिया ना वहां पर, देखो देखो उत्कृष्ट अंतरकाल, अंतर पड़ा ना, अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में लगने वाले काल के बराबर है। क्योंकि हाँ हाँ उसी जीव के, उसी जीव को होना चाहिए ना, जिस देव और नारकी जीव ने तिर्यंचों में उत्पन्न होकर और वहां उपपाद योग द्वारा औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके दूसरे समय में उनकी निर्जरा की है, उसके उन परमाणुओं के अधक कर्म का प्रारंभ होता है, पश्चात तीसरे समय से उसका अंतर होता है। यानी दूसरे समय में तो वो उसका काल कहेंगे, औदारिक शरीर रूप से थे ना, एक समय तक रहते ना, और फिर वो अंतर हुआ है ना, वो औदारिक शरीर, यानी वो वर्गणा अन्य रूप से हो गई, शरीर से छूटी, वो तो पहले समय छूटी थी, दूसरे समय में वो औदारिक रूप से ही रही, तीसरे समय में उस पुद्गल का जो अन्य रूप हो गया तो वहां से उसका अंतर शुरू हुआ, जो कि उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों के अंतिम समय तक जाता है। इसके बाद अगले समय में पहले निर्जीर्ण हुए उन औदारिक नौकर्म स्कंधों के बंध को प्राप्त होने पर, ये फिर बंद हुआ यहां, अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। आपका प्रश्न सही है, एक पुद्गल परिवर्तन हम उसी को कहते हैं जब वे ही परमाणु उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ फिर आइडेंटिकल, विशेषार्थ में पढ़ेंगे, इस प्रकार अधक कर्म का आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों के जितने समय होते हैं उतने उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध होता है। इतनी विशेषता है कि इस अंतरकाल में से तीन समय न्यून करके उसका कथन करना चाहिए, वो तीन तीसरे समय में उसका अंतर प्रारंभ हुआ था, इसलिए क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है, ये इन जनरल किस कर्म का अंतर कितना है ये बात चल रही है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्रिया कर्म का अंतर की बात चल रही है, अंतर यानी वो मिथ्या तो में कितने देर तक चला गया तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन, उसमें कुछ कम करना उत्कृष्ट। इसी प्रकार इरियापद कर्म और तप कर्म का भी अंतरकाल कहना चाहिए, क्योंकि वो पहले भाव में उसने उपशम श्रेणी मानकर वो नीचे उतरा है, इरियापद कर्म फिर अंतर शुरू हुआ, फिर बाद में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण हुआ, तो उसका तप कर्म में भी ऐसा है। विशेषार्थ, अभी इसी को विशेषार्थ बतलाते, इसी का यहाँ ओग से छह कर्मों के अंतरकाल का विचार किया गया है। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव दोनों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं होता, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि संसारस्थ जीव के कोई न कोई योग और किसी न किसी कर्म का बंध उदय और सत्व निरंतर पाया जाता है। बताए ना, तो योग तेरहवें तक तो कोई ना कोई योग और सभी को किसी न किसी कर्म का बंध उदय और सत्व निरंतर पाया जाता है। यद्यपि अयोगी केवली गुणस्थान में योग का अभाव हो जाता है, पर यह जीव पुनः संयोगी नहीं होता, इसलिए अंतरकाल के प्रकरण में इसका ग्रहण नहीं होता। अधक कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं होता, क्योंकि अनंत एकेंद्रीय जीव तथा असंख्यात व संख्यात दूसरे जीव। यह असंख्यात कौन से जीव हैं? असंख्यात वो सारे अन्य द्विंद्रियादि जो है ना, वो असंख्यात में ले, एक इंद्रियों में सब एक इंद्रियों मिलकर अनंत हो गए। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, देवनारकी यहाँ नहीं, अधक कर्म है ना, औदारिक शरीर वालों का ही लेना। वो संख्यात दूसरे जीव, मनुष्यों को संख्यात ही क्यों कहा? अपर्याप्त, अपर्याप्तों को क्यों छोड़ा? अपर्याप्त जीवों को, उसमें अंतर पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपर्याप्त है, वो लगातार हमेशा नहीं रहते, वो कभी कभी बीच में अंतर पड़ता है, इसलिए उसको निरंतर ग्रहण करने वालों में उसको नहीं लिया। वो ये जीव औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंदों को निरंतर ग्रहण कर, आगे बात है ना, निरंतर ग्रहण करने वाले जीव, तो मनुष्य पर्याप्त तो हमेशा हो गए, परंतु अपर्याप्त तो हमेशा नहीं होते, उन्हें औदारिक शरीर रूप से परिणाम आते हैं। ये तो परिणाम आने की बात है। इस कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना होता है, इसका संयुक्तिक मूल में ही विचार किया है। उत्कृष्ट अंतरकाल बतलाते समय वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया है, मात्र इस काल में से तीन समय कम किए हैं। ये तीन समय प्रारंभ के दो समय और अंत का एक समय लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वह औदारिक रूप से हुई ना, उसका एक समय ले लेना। अब शेष रहे तीन कर्म, सो नाना जीवों की अपेक्षा उनका भी अंतरकाल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इन कर्मों के धारक जीव निरंतर पाए जाते हैं। कौन से तीन कर्म रहे? एरियापद, तप कर्म और क्रिया कर्म है। इनका एक जीव की अपेक्षा जघन्यकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व संयम और उपशांत कषाय गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त ही पाया जाता है। अभी हमको यहाँ अंतर देखना है, काल नहीं। इनका उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि किसी जीव के सम्यक्त्व संयम और उपशांत कषाय कुछ कम, हाँ ये कम मैं पढ़ रही थी, कम अर्धपुद्गल पढ़ने, कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन न करना, परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि किसी जीव के सम्यक्त्व संयम और उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त होने के बाद वह इन्हें यदि अधिक से अधिक काल तक न प्राप्त हो तो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक नहीं प्राप्त होता, इसके बाद वह सम्यक्त्व और संयम को अवश्य ही प्राप्त होता है, और यदि अनुकूलता हो तो उपशम श्रेणी पर भी वह तब आरोहण करता है। अनुकूलता होने वो तो उसके पहले कितने बार किया है क्या है उसकी बात आती ना, और जरूरी नहीं वो तो हर बार उपशम श्रेणी पर चढ़े ही। इस प्रकार यह सामान्य से छह कर्मों का अंतरकाल है। अभी विशेष से कल बात करेंगे। हाँ, ये जो आपका जो प्रश्न था ना कि पुद्गल परावर्तन तभी सिद्ध होता है कि वे सब परमाणु वो फिर दोबारा ग्रहण करता है, हाँ, तो उसका अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन कैसे होगा? तो ये पुद्गल परावर्तन में फिर हम देखेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है वही परमाणु और उसी स्पर्श रसगंध के साथ, हाँ ऐसा ही समझा था, अभी वे ही लेना है कि वैसे ही लेना वो अभी फिर देखेंगे। जावानी के क्या